एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
इस ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त विचारक और उनकी एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कहना चाहिए कि दुनिया भर में लेखकों और सोचने वालों को ना सच में हिला कर रख दिया था।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ज़ियान पॉल सार्त्र की किताब साहित्य क्या है, जिसका असल फ्रेंच नाम है क्या स्क्वायर अलित्रिचंद।
और ये किताब आई थी 1947 में। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद का माहौल।
1947। और यही मतलब एक सवाल मन में आता भी, 1947 की एक फ्रांसीसी फिलोसोफर की किताब आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? दुनिया तो तब से अब तक कितनी बदल गई है।
अरे बिल्कुल जरूरी है, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा, क्योंकि ये किताब उन बिल्कुल बुनियादी सवालों से जूझती है जो आज भी उतने ही अहम है, जैसे क्या लिखना, पढ़ना, या आजकल की भाषा में कहें तो कॉन्टेंट बनाना। हाँ। ये सब सिर्फ टाइम पास है
या
इसकी कोई बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है? क्या कोई लेखक या कलाकार ये कह सकता है कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मुझे दुनियादारी से क्या लेना देना, खासकर तब जब चारों तरफ इतनी उथल पुथल मची हो।
सही का। और आज तो देखिए, जब हर कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा है, अपनी राय दे रहा है, वीडियो बना रहा है, एक तरह से सब कंटेंट क्रिएटर हैं।
बिल्कुल।
तो ये सवाल और भी तीखा हो जाता है कि हम जो कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सार्त्र में इसी जिम्मेदारी पर सोचने को मजबूर करते हैं।
असल में यही सवाल कि लेखक का रोल क्या है, उसका गोल, उसका मकसद क्या होना चाहिए, यही तो इस किताब का दिल है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए जरा ज़ियान पॉल सार्त्र की इस सोच की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये सार्त्र साहब थे कौन आखिर।
ज़ियान पॉल सार्त्र मतलब 20वीं सदी के फ्रांस के शायद सबसे मशहूर बुद्धिजीवियों में से एक। वो सिर्फ फिलोसोफर ही नहीं थे बल्कि उपन्यासकार भी थे, नाटककार थे, स्क्रीन राइटर थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। उनका नाम सुनते ही लोगों को फौरन अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म याद आता है।
हाँ, अस्तित्ववाद, वो सोच जो कहती है कि इंसान पहले दुनिया में आता है ना, और फिर अपने कामों से, अपने फैसलों से ये तय करता है कि वो क्या बनेगा। कोई पहले से तय स्वभाव या मकसद नहीं होता। उनका वो मशहूर जुमला है ना, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस।
बिल्कुल, अस्तित्व सार से पहले आता है।
हाँ, मतलब हम जो चुनते हैं वही बन जाते हैं। ये सुनने में बहुत आजादी वाली बात लगती है, लेकिन इसके साथ एक भारी जिम्मेदारी भी जुड़ी है।
बिल्कुल। और सार्त्र सिर्फ बंद कमरे में बैठकर सोचने वाले फिलोसोफर नहीं थे। उनके नाटक जैसे नो एग्जिट या उपन्यास जैसे नौजिया और उनके लेख, वो अपने जमाने के बड़े मुद्दों से सीधे टकराते थे। दूसरा विश्व युद्ध, फ्रांस पर नाजी कब्जा, उपनिवेशवाद, फिर कोल्ड वॉर।
अच्छा, वो मानते थे कि सोचने और करने में, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस में, फासला नहीं होना चाहिए।
शायद इसीलिए साहित्य क्या है लिखने के लिए वो इतने सही इंसान थे। मतलब जब उनकी पूरी फिलॉसफी ही आज़ादी और जिम्मेदारी पर टिकी है, तो फिर लेखक जो शब्दों और विचारों से खेलता है, वो इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है भला?
और एक मजेदार बात बताऊं, 1964 में उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था।
हाँ हाँ, सुना है मैंने।
और उन्होंने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया।
सच में?
क्यों?
कहा कि लेखक को किसी संस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अपनी आजादी बनाए रखनी चाहिए। ये दिखाता है कि वो अपने विचारों और अपनी आजादी को लेकर कितने पक्के थे।
कमाल है। तो अब आते हैं इस किताब पर, साहित्य क्या है, इसका निचोड़ क्या है, ये किताब असल में कहना क्या चाहती है।
देखिए, ये किताब लिटरेचर को और खासकर गद्य यानी प्रोज को, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध वगैरह, उसको देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करती है। सार्त्र का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि साहित्य सिर्फ पढ़ने और वाह वाह करने की चीज नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि ये एक्शन का, कर्म का एक तरीका है। लेखक की एक सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है जिससे वो भाग नहीं सकता, उसे दुनिया से जुड़ना ही होगा। इसी को सार्त्र ने लिटरेत्योर अंगाजे कहा, यानी प्रतिबद्ध साहित्य, ऐसा साहित्य जो किसी मकसद से जुड़ा हो।
मतलब वो जो एक सोच है कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि बस सुंदरता के लिए लिखो दुनिया जाए भाड़ में, उसको वो पूरी तरह नकारते हैं।
हाँ बिल्कुल नकारते हैं। वो कहते हैं कि गद्य लेखक का काम है भाषा का इस्तेमाल करके दुनिया को, और खासकर उसमें जो अन्याय है, जो गलत चीजें हैं, उनको प्रकट करना, सामने लाना, डिस्क्लोज। और जब लेखक इस सच्चाई को पाठक के सामने रखता है तो वो एक तरह से पाठक की आज़ादी से अपील करता है, उसे झकझोड़ता है कि भाई अपनी जिम्मेदारी समझो और शायद दुनिया को बदलने के बारे में सोचो।
तो लिखना एक तरह से आज़ादी का काम हुआ और इसका मकसद दूसरों की आज़ादी है। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा बड़ा दावा नहीं लगता कि भाई लिखने से पूरी इंसानियत की मुक्ति में मदद मिलेगी?
दावा बड़ा जरूर है, पर यही सार्त्र की सोच की ताकत भी है। उनके लिए लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये एक नैतिक और राजनैतिक काम था। ये किताब कोई गाइड नहीं है कि भाई अच्छा कैसे लिखें,
नहीं,
बल्कि ये इस सवाल की पड़ताल है कि क्यों लिखें और किसके लिए लिखें। ये उन लोगों के लिए है, लेखक हों, आलोचक हों, गंभीर पाठक हों, जो ये सोचते हैं कि दुनिया में कला की जगह क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है।
ठीक है, चलिए अब किताब के अंदर झांकते हैं। ये आमतौर पर चार हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है लेखन क्या है, यहीं से शुरू करते हैं, क्या कहते हैं?
हाँ बिल्कुल, ये बुनियाद है। यहीं पर सार्त्र गद्य और कविता के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं जो उनकी पूरी थ्योरी का आधार है। वो कहते हैं कि गद्य लिखने वाला जो है वो शब्दों का इस्तेमाल संकेतों की तरह करता है।
संकेतों की तरह मतलब?
मतलब गद्य में शब्द शीशे की तरह होते हैं, उनका काम होता है असल दुनिया की चीजों या आइडियाज की तरफ इशारा करना। भाषा एक औजार है, एक टूल है जिससे हम बातचीत करते हैं, दुनिया को समझाते हैं।
अच्छा, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक मतलब की तरफ इशारा कर रहे हैं। सार्त्र इसे कहते हैं प्रकटीकरण द्वारा कर्म, एक्शन बाय डिस्क्लोजर।
बिल्कुल,
तो गद्य लिखने वाले की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस औजार का सही इस्तेमाल करें, चीजों को सही नाम दे, खासकर नाइंसाफी को। जैसे ही आप किसी बुरी चीज को नाम देते हैं, आप उसे उजागर कर देते हैं, है ना, और फिर उसे बदलना मुमकिन हो जाता है।
सही कहा। इसके उलट सार्त्र कहते हैं कवि शब्दों को संकेतों की तरह नहीं बल्कि खुद चीजों, थिंग्स इन देमसेल्व्स की तरह इस्तेमाल करता है। कवि शब्दों का इस्तेमाल कुछ और बताने के लिए नहीं कर रहा, वो शब्दों से ही कुछ बना रहा है, जैसे पेंटर रंगों से तस्वीर बनाता है या मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति। कविता दुनिया के बारे में बात नहीं करती, वो खुद दुनिया में एक नई चीज बन जाती है, उसका अपना वजूद है।
तो इस फर्क का मतलब क्या हुआ प्रतिबद्धता के लिहाज से?
मतलब ये हुआ कि क्योंकि कविता का लक्ष्य दुनिया के बारे में कोई सीधा संदेश देना नहीं है, इसलिए कवि उस तरह से प्रतिबद्ध, एंगेज्ड नहीं हो सकता जैसे गद्य लेखक हो सकता है या उसे होना चाहिए। आप किसी पेंटिंग से ये नहीं पूछ सकते भाई तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है।
हाँ सही बात है।
वैसे ही आप कविता से ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन गद्य लेखक जैसे ही वो भाषा को संकेत की तरह इस्तेमाल करता है, वो जाने अनजाने में एंगेज हो ही जाता है। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि वो कैसे और किसके प्रति प्रतिबद्ध है। इस तरह सार्त्र कविता, संगीत, पेंटिंग जैसी कलाओं को सीधी सामाजिक जिम्मेदारी की मांग से थोड़ा अलग कर देते हैं और अपना पूरा ध्यान गद्य लिखने वालों पर, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार, उन पर लगाते हैं।
समझ गए। तो गद्य लेखक तो भाई बच नहीं सकता, उसे प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्यों लिखें, लिखने की वजह क्या है, क्या मोटिवेशन है?
हाँ, यहाँ सार्त्र भाषा से थोड़ा आगे बढ़कर ये देखते हैं कि कोई इंसान कुछ रचता क्यों है, क्रिएट क्यों करता है। वो कहते हैं कि लेखक शायद इसलिए लिखता है क्योंकि उसे दुनिया में अपना होना, अपना वजूद थोड़ा बेमतलब सा या कहें अचानक कॉन्टिंजेंट सा लगता है।
अच्छा,
उसे लगता है कि भाई मेरा जो तजुर्बा है वो तो बस मेरा ही है, दुनिया के लिए इसका क्या मतलब। तो वो लिख कर अपने निजी अनुभव को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता है जो सबके लिए हो, जो टिकाऊ हो। शब्दों में दुनिया को ढाल कर वो उसे एक तरह से मायने देने की कोशिश करता है।
लेकिन किताब तो सिर्फ कागज पर छपे अक्षर हैं, वो अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकती, है ना?
बिल्कुल, और यहीं पर पाठक का रोल आता है। किताब तभी जिंदा होती है जब कोई पाठक उसे पढ़ता है, अपनी सोच और कल्पना से उसे जीता है। इसलिए लिखना असल में पाठक की आज़ादी के लिए एक अपील है। लेखक पाठक को जबरदस्ती कुछ मनवा नहीं सकता, वो बस रास्ता दिखा सकता है। किताब पाठक की आज़ादी के सामने रखा एक प्रस्ताव है कि आओ इस दुनिया को जरा ऐसे देखो।
और यहीं पर वो उदारता का समझौता वाली बात आती है ना, जो आपने कहा था।
हाँ बिल्कुल, ये इस हिस्से का सार है। लेखक और पाठक का रिश्ता दो तरफा है। लेखक जब लिखता है तो वो एक तरह की उदारता दिखा रहा है, वो दुनिया को देखने का अपना नजरिया पाठक को सौंप रहा है। और पाठक जब पढ़ता है तो वो भी उदारता दिखा रहा है, वो किताब को जिंदा करने के लिए अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव उसे उधार दे रहा है। ये एक तरह का समझौता है जो आपसी भरोसे और आज़ादी पर टिका है।
और क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ही आज़ादी पर टिकी है, लेखक की रचने की आज़ादी, पाठक की उसे समझने की आज़ादी, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य का असली मौजू, उसका असली सरोकार भी आज़ादी ही होना चाहिए?
सार्त्र तो यही मानते हैं। उनके लिए अच्छी किताब वही है जो पाठक को उसकी अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी का एहसास कराए। अगर कोई लेखक अपनी कला का इस्तेमाल जुल्म या गुलामी को सही ठहराने के लिए करता है तो वो अपनी कला के साथ धोखा कर रहा है।
क्यों?
क्योंकि वो आज़ादी के काम यानी लिखने का इस्तेमाल आज़ादी को कुचलने के लिए कर रहा, ये तो विरोधाभास है।
ठीक है, ये बात समझ आई। अब तीसरा हिस्सा है किसके लिए लिखें। ये थोड़ी जमीनी बात लगती है, लेखक आखिर लिखता किसके लिए है?
हाँ, यहाँ सात्र लिखने पढ़ने की जो थोड़ी अमूर्त बातें थीं उनको असल दुनिया, समाज और इतिहास से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि लेखक किसी हवा हवाई अनजान दर्शक, पूरी मानवता या भविष्य की पीढ़ियों के लिए नहीं लिखता। वो अपने जमाने के, अपने आसपास के एक खास असल दर्शक, कंक्रीट ऑडियंस के लिए लिखता है।
अच्छा।
लेखक की भाषा, उसके मुद्दे, उसकी चिंताएं सब उसके अपने वक्त से जुड़ी होती हैं। वो कहते हैं कि भविष्य के लिए लिखने की बात करना कई बार आज की जिम्मेदारियों से भागने का बहाना भी होता है।
और इसे समझाने के लिए वो फ्रांस के साहित्य के इतिहास का भी जिक्र करते हैं, है ना?
बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि कैसे, मान लीजिए 17वीं सदी में लेखक महलों और दरबारों के लिए लिखते थे, एक छोटे अमीर तबके के लिए जो पहले से चल रही व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। फिर 18वीं सदी में जब मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ उभर रहा था तो पढ़ने वालों का दायरा बढ़ा, तब वॉल्टियर जैसे लेखकों ने इस नए वर्ग की आवाज़ बनकर पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। सार्त्रिय के लिए ये प्रतिबद्ध साहित्य का एक सुनहरा दौर था।
और फिर 19वीं सदी में क्या हुआ?
सार्त्र कहते हैं कि जब यही मध्यम वर्ग सत्ता में आ गया तो उसे अब सवाल उठाने वाले लेखक पसंद नहीं आए। लेखक अपने दर्शकों से कटावा महसूस करने लगा और इस अकेलेपन से उनके मुताबिक दो रास्ते निकले। एक यथार्थवाद, रियलिज्म, समाज को बाहर से एक वैज्ञानिक की तरह देखना बिना ज्यादा जुड़े हुए।
और दूसरा
कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी समाज से पूरी तरह मुंह मोड़कर सिर्फ कला के रूप, उसकी सुंदरता पर ध्यान देना। एक तरह का नकारात्मक साहित्य जो अपनी बेमतलबियत पर ही इतराता था।
तो निचोड़ ये है कि लेखक हमेशा एक स्थिति में होता है, मतलब उसका अपने दर्शकों से रिश्ता, उसका अपना सामाजिक बैकग्राउंड, उसके ज़माने की राजनीतिक उथल पुथल, ये सब तय करते हैं कि वो क्या और कैसे लिखेगा। वो इससे भाग नहीं सकता।
सही पकड़ा। वो सिर्फ ये चुन सकता है कि इस स्थिति का जवाब कैसे देगा। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, 1947 में लेखक की स्थिति। ये एक तरह का एक्शन प्लान है ना?
हाँ, ऐसा लगता है। ये पिछले सारे विचारों को सार्त्र अपने वक्त यानी दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के माहौल पर लागू करते हैं। ये उनके साथी लेखकों के लिए एक सीधी पुकार है। युद्ध और नाजी कब्जे की भयानक सच्चाई देखने के बाद कोई लेखक अब ये नहीं कह सकता था कि मैं मासूम हूँ या मैं न्यूट्रल हूँ।
हाँ, वो दौर ही ऐसा था।
हर फैसला, यहाँ तक कि लिखना या न लिखना भी एक राजनीतिक काम बन गया था। वो कला कला के लिए वाली बात अब एक ऐसी अय्याशी थी जिसे नैतिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता था।
लेकिन 1947 में लेखक के सामने मुश्किल ये थी कि उसका दर्शक वर्ग बटा हुआ था। पढ़ने वाले ज्यादातर लोग तो वही मध्यम वर्ग बुर्जुआ के थे, पर सार्त्र के हिसाब से अगर लेखक सच में बदलाव लाना चाहता है तो उसे असल में किसके लिए लिखना चाहिए? शोषित वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग, सर्वहारा के लिए?
लेकिन मुश्किल ये थी कि वो वर्ग उस वक्त ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में था, है ना?
बिल्कुल। और पार्टी चाहती थी कि लेखक पार्टी लाइन पर चले, पार्टी का प्रचार करे, न कि सच्ची आलोचनात्मक बातें लिखें।
तो सार्त्र का रास्ता क्या था? कोई बीच का रास्ता सुझाया उन्होंने?
हाँ, उन्होंने दोनों एक्सट्रीम्स को नकार दिया। ना तो सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए लिखो जो तुम्हारी आलोचना को हजम कर जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा, और न ही पार्टी का भोपू बनो जिसमें कला की आज़ादी और सच्चाई दोनों कुर्बान हो जाएंगी। वो एक ऐसे साहित्य की बात करते हैं जो समाज के सभी लोगों को संबोधित करे, जिसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना हो जहां कोई वर्ग ना हो, जहां लोग खुलकर बात कर सकें। लेखक को सबकी आलोचनात्मक चेतना, सबकी जमीर की आवाज बनना चाहिए।
तो लेखक का काम है प्रैक्सिस, यानी सोच और कर्म को जोड़ने वाला साहित्य रचे, ऐसा लेखन जो अपने वक्त की नब्ज पहचाने और बदलाव लाने की अपनी ताकत को समझे।
बिल्कुल। लेखक को बड़े मुद्दों पर जैसे उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, हर तरह की नाइंसाफी पर पक्ष लेना चाहिए और दुनिया को इस तरह पेश करना चाहिए कि पाठक अपनी जिम्मेदारी महसूस किए बिना रह ना सके। मकसद है उकसाना, सवाल खड़े करना, पाठक की सोई हुई आज़ादी को जगाना।
वाह, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को कुछ खास बातों या संदेशों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे, क्या टेकअवेज है?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो प्रतिबद्धता, एंगेजमेंट ही है। लिखना कोई शौकिया काम नहीं है, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एक सोचा समझा तरीका है, खासकर गद्य लेखक के लिए। हर शब्द एक नैतिक और राजनीतिक चुनाव है।
और तटस्थता या न्यूट्रल रहना,
वो एक धोखा है, जिम्मेदारी से भागना है, सार्त्र के अनुसार।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, गद्य और कविता का फर्क, ये बहुत अहम है उनकी थ्योरी में। गद्य शब्दों को दुनिया पर असर डालने वाले औजार की तरह इस्तेमाल करता है, इसलिए वो स्वभाव से ही राजनीतिक और नैतिक है, जबकि कविता शब्दों से एक सुंदर चीज बनाती है, इसलिए वो सीधी सामाजिक उपयोगिता के दायरे से थोड़ी बाहर है।
तीसरा,
वो लेखक और पाठक के बीच उदारता का समझौता। साहित्य अकेले नहीं बनता, पाठक सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक साथी है जो किताब को अपनी सोच से पूरा करता है, यह साहित्य की नैतिक बुनियाद है। चौथा, आज़ादी, साहित्य का असली विषय और लक्ष्य, क्योंकि साहित्य लेखक की आज़ादी से जन्म लेता है और पाठक की आज़ादी को आवाज़ देता है, इसलिए हर सच्चे साहित्य का आखिरी मकसद और कीमत इंसान की आज़ादी ही होनी चाहिए।
और पांचवा, लेखक का अपने इतिहास और हालात से बंधा होना, स्थिति। कोई भी लेखक अपने ज़माने और समाज से कटकर नहीं लिख सकता, उसकी भाषा, संस्कृति, उसका वर्ग, राजनीतिक माहौल उसे बनाते हैं। अपनी इस स्थिति को नज़रअंदाज करना एक तरह का खुद से झूठ बोलना है, सार्थ इसे बैड फेथ कहते हैं। एक जिम्मेदार लेखक को अपने वक्त को समझना चाहिए और अपने लोगों के लिए उनके बारे में लिखना चाहिए।
और हाँ, एक और बात, कला कला के लिए का विरोध, ये भी एक ज़रूरी संदेश है। सार्थ इसे गुजरे ज़माने की बात मानते हैं जो आज के दौर में खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है।
क्या इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो मतलब दिमाग में अटक जाएं, जिन्हें हम याद रख सकें?
हाँ, कई हैं। एक तो बहुत ही दमदार बात है, लेखक का काम ये पक्का करना है कि कोई भी दुनिया से अनजान न रह सके और कोई ये ना कह सके कि वो इस सबके बारे में बेगुनाह है।
अरे वाह, ये तो सीधी चोट है। मतलब एक बार किसी ने नाइंसाफी या किसी बुरी सच्चाई को लिख दिया, बता दिया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था।
बिल्कुल,
पढ़ने वाला भी एक तरह से भागीदार बन जाता है। अब उसकी चुप्पी भी एक फैसला है, वो मासूमियत का बहाना खत्म।
एक और लाइन जो गद्य की ताकत बताती है, गद्य लेखक वो इंसान है जिसने कर्म करने का एक खास तरीका चुना है, जिसे हम प्रकटीकरण द्वारा कर्म कह सकते हैं।
ये फिर से वही बात आ गई, लिखना सिर्फ बताना नहीं बल्कि करना है, एक्शन है। ये पाठक के दिमाग पर असर डालता है और फिर शायद पाठक असल दुनिया में कुछ करे। और तरीका क्या है? प्रकटीकरण, सच्चाई को सामने लाना। इसीलिए सार्थ के लिए गद्य इतनी बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ा है।
और एक जो सीधे सीधे राजनीति से जुड़ती है, कोई गुलामों के लिए नहीं लिखता। गद्य की कला उस एकमात्र शासन से जुड़ी है जिसमें गद्य का कोई मतलब है, लोकतंत्र।
इसका मतलब तो साफ है, क्योंकि गद्य एक आज़ाद इंसान की दूसरे आज़ाद इंसान से अपील है, ये वहीं फल फूल सकता है जहां सोचने और बोलने की आज़ादी हो।
हाँ,
तानाशाही में जहां लोगों को गुलाम या बस चीज समझा जाता है, वहां आज़ादी की अपील या तो बेमानी है या खतरनाक। तो सार्थ के लिए साहित्य, लोकतंत्र और इंसान की आज़ादी एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं।
ये बातें सुनने में तो बड़ी फिलोसॉफिकल लगती हैं, लेकिन क्या इनका हमारी आज की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? मतलब कोई प्रैक्टिकल बात?
अरे बिल्कुल है। सोचिए, आज के लेखकों, पत्रकारों, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, मतलब हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये किताब एक आईने की तरह है। ये पूछने पर मजबूर करती है, मैं ये क्यों बना रहा हूँ या बना रही हूँ? देखने वाले, पढ़ने वाले कौन हैं? उनके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है? क्या मैं सिर्फ मनोरंजन कर रही हूँ या ज़रूरी मुद्दों से भी जुड़ रही हूँ? ये उस सोच को चुनौती देती है जो कहती है कि अरे मैं तो बस न्यूज़ दे रहा हूँ, या मेरी कहानी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सार्थ कहते हैं, भाई हर चुनाव का वजन होता है।
और हम जैसे पढ़ने वालों, सुनने वालों, मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या? सार्थ हमें सिर्फ पैसिव कंज्यूमर नहीं बल्कि एक्टिव पार्टनर बनाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए, ये लेखक या क्रिएटर मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझसे क्या चाहता है, ये मुझे क्या सोचने, महसूस करने या करने के लिए कह रहा है, ये नज़रिया हमें ज़्यादा जागरूक और आलोचनात्मक बनाता है, चाहे हम कोई उपन्यास पढ़ें, न्यूज़ देखें या बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करें।
और हाँ, शिक्षकों और छात्रों के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ हो सकती है। ये साहित्य को सिर्फ कहानी या भाषा की एक्सरसाइज के तौर पर नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक काम के रूप में देखने का नज़रिया देती है। ये पूछने को उकसाती है कि इस कहानी या इस लेख का समाज पर क्या असर हो सकता है, ये आज़ादी के बड़े सवाल से कैसे जुड़ता है।
और हम सब जो एक लोकतंत्र में रहते हैं, उनके लिए सार्त्र की बातें बोलने की आज़ादी और एक जिम्मेदार मीडिया की अहमियत को बार बार याद दिलाती हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे लेखक हों जो कड़वी सच्चाइयां कहने और सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखें। यह हमें याद दिलाता है कि कला और संस्कृति राजनीति से अलग कोई टापू नहीं है, बल्कि वो मैदान है जहां समाज अपने मूल्यों पर बहस करता है और अपनी अंतरात्मा का सामना करता है।
तो आखिर में इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? आपके लिए सबसे खास बात क्या रही इस किताब में?
मेरे लिए तो शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि लिखना कभी भी मासूम नहीं होता, खासकर गद्य लिखना। हर वाक्य एक चुनाव है। या तो आप सच्चाई को सामने ला रहे हैं या उसे छुपा रहे हैं, या तो आप इंसान की आज़ादी को बढ़ा रहे हैं या उसे कम कर रहे हैं। ये सोचना कि साहित्य बस एक कोने में रखी सुंदर सी चीज़ है, इस नज़रिए को ये किताब पूरी तरह बदल देती है। ये उसे सीधे समाज और राजनीति के बीच ला खड़ा करती है।
और मेरे लिए पाठक की भूमिका को जो नया सम्मान मिला वो बहुत अहम लगा, कि हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, हम उस रचना को पूरा करने वाले साथी हैं, उसकी नैतिक यात्रा में हिस्सेदार हैं। ये बात हमें ज़्यादा जिम्मेदार बनाती है, चाहे हम कुछ लिख रहे हों या पढ़ रहे हों। सार्थ के शब्दों में कहें तो हम सब एक स्थिति में हैं, और हमारे शब्द उस स्थिति में हमारे एक्शन लेने का एक अहम तरीका है।
संक्षेप में कहें तो साहित्य क्या है? सिर्फ किताबी आलोचना नहीं है, ये एक नैतिक और राजनैतिक ऐलान है। ये कला को इंसान की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ता है। हो सकता है कि उनके इतिहास के कुछ विश्लेषणों पर आज लोग बहस करें, लेकिन जिम्मेदारी, चेतना और प्रतिबद्धता की उनकी जो मूल पुकार है, वो आज भी उतनी ही जरूरी और चुनौती भरी लगती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।